एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर चर्चा करने वाली हैं। नाम है द फ्यूचर और लेखक है निक मॉन्टफोर्ट।
हाँ, द फ्यूचर। और ये टॉपिक मतलब आजकल कितना जरूरी है ना।
बिल्कुल, हर तरफ टेक, एआई, स्मार्ट सिटीज, रोज कुछ नया सुनने को मिलता है भविष्य के बारे में।
ऐसा लगता है जैसे भविष्य बस आ रहा है हमारी तरफ, एक तय रास्ते पर।
हाँ, और ये किताब ना इसी सोच पर सवाल उठाती है कि क्या हम सिर्फ देख रहे हैं या इसे बनाने में हमारा भी कोई हाथ है।
और खास तौर से ये किताब देखती है कि कंप्यूटेशनल सिस्टम्स, मेरा मतलब है एल्गोरिदम्स, एआई, बिग डेटा, ये सब कैसे हमारी सोच को बदल रहे हैं।
न सिर्फ सोच को बल्कि शायद भविष्य को बना भी रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, यही तो पेच है।
ठीक, और इस्तेमाल करें।
तो चलिए लेखक से शुरू करते हैं। निक मॉन्टफोर्ट ये कोई टिपिकल प्रोफेसर नहीं है।
सही कहा, MIT में है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डिजिटल मीडिया पढ़ाते हैं।
लेकिन कमाल की बात यह है कि वो कंप्यूटर साइंस और ह्यूमैनिटीज मतलब मानविकी दोनों में हैं।
हाँ, उनके पास कंप्यूटर साइंस में PhD है, पर वो एक कवि भी हैं और इंटरैक्टिव फिक्शन भी लिखते हैं।
तो ये कॉम्बिनेशन उन्हें एक बहुत ही यूनिक नजरिया देता है।
कैसे?
मतलब वो टेक को अंदर से समझते हैं, कोड, सिस्टम इंजीनियरिंग, ये सब। लेकिन साथ ही उनमें एक कलाकार वाली, एक साहित्यिक आलोचक वाली समझ भी है। वो क्रिएटिव भी हैं, क्रिटिकल भी हैं।
अच्छा, तो सिर्फ बनाने वाले या सिर्फ आलोचना करने वाले नहीं, दोनों।
एग्जैक्टली। वो MIT में द ड्रॉप टैंक नाम की लैब भी चलाते हैं कंप्यूटेशनल आर्ट और लिटरेचर पर।
वाह, तो फिर इस किताब द फ्यूचर के लिए वो एकदम सही व्यक्ति लगते हैं।
बिल्कुल, टेक के असर को भी समझते हैं और उसे रचनात्मक तरीके से ढालने की बात भी कर सकते हैं।
तो फिर किताब का मेन आइडिया क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं मॉन्टफोर्ट?
देखो, सबसे बड़ी बात जो वो कह रहे हैं वो ये है कि भविष्य कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिसे बस खोजना है या जिसकी भविष्यवाणी करनी है।
अच्छा, तो फिर क्या है?
वो कहते हैं कि भविष्य एक प्रोजेक्ट है, एक काम है जिसे हमें एक्टिवली मतलब सक्रिय रूप से और मिलकर बनाना है।
मिलकर बनाना है, ये जरूरी है।
हाँ, वो इस सोच को चैलेंज करते हैं कि टेक्नोलॉजी ही सब तय कर देगी और हम बस बहते जाएंगे।
लेकिन वो ये भी मानते हैं कि कंप्यूटेशनल सिस्टम्स का असर बहुत गहरा है आजकल।
हाँ, ये दूसरा पहलू है। वो मानते हैं कि एल्गोरिदम, डेटा, AI, ये सब हमारी समाज को, भविष्य की हमारी कल्पना को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं।
ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटर की तरह सोचना ही भविष्य को समझने का मतलब डिफॉल्ट तरीका बन गया है।
कुछ वैसा ही, और यही किताब का मकसद साफ होता है। वो द फ्यूचर एक अकेले तयशुदा भविष्य की धारणा को तोड़ना चाहते हैं।
वो यूटोपिया और डिस्टोपिया वाले चक्र से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं कि या तो सब जादुई होगा या सब तबाह हो जाएगा।
हाँ, वो कहते हैं कि इन दोनों एक्सट्रीम से आगे देखना होगा।
तो फिर रास्ता क्या है? अगर भविष्यवाणी नहीं करनी, टेक्नोलॉजी के भरोसे नहीं रहना, तो करें क्या?
मॉन्टफोर्ट का सुझाव है कि सवाल बदलना होगा। भविष्य क्या होगा ये पूछने की बजाय हमें पूछना चाहिए हम कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं।
अच्छा, फोकस बदलने की बात, चाहत पर।
हाँ, और फिर उसे बनाने के तरीकों पर काम करना चाहिए।
और इसके लिए क्या चाहिए,
इनका असर क्या है?
ठीक है, मतलब तकनीकी समझ।
हाँ, और दूसरी चीज, भविष्य बनाने के क्रिएटिव तरीके अपनाना, जैसे वर्ल्ड बिल्डिंग, प्रोटोटाइपिंग, इन पर हम आगे बात करेंगे।
ये सुनने में तो काफी पावरफुल लग रहा है।
और ये किताब सिर्फ टेक वालों के लिए नहीं है, ये डिजाइनर्स, आर्टिस्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, टीचर्स, मतलब हर उस नागरिक के लिए है जो सोचता है कि समाज किधर जा रहा है।
एक तरह से इनविटेशन है कि आओ भविष्य के डिजाइन में हिस्सा लो।
बिल्कुल। चलो अब किताब के कुछ मेन आइडियाज को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले ये भविष्य की आम धारणा पर सवाल क्यों उठाते हैं।
हाँ, ये द फ्यूचर वाली बात एक वचन में।
वो कहते हैं ये शब्दी मतलब एक जाल है, ये ऐसा दिखाता है जैसे कोई एक ही रास्ता है, शायद टेक्नोलॉजी ने तय कर दिया वो रास्ता,
और इससे हमारी अपनी एजेंसी मतलब कुछ करने या बदलने की जो हमारी ताकत है वो कम लगती है।
एग्जैक्टली। और फिर वो भविष्यवाणियों की बात करते हैं, कितनी सुनते हैं हम, उड़ने वाली कारें आएंगी, ऑफिस पेपरलेस हो जाएंगे।
हाँ, और होता क्या है, अक्सर वो भविष्यवाणियां सच नहीं होती हैं।
क्यों नहीं होती? मॉन्टफोर्ट कहते हैं कि ये जो सामाजिक तकनीकी सिस्टम है ना, ये बहुत जटिल हैं, इनकी भविष्यवाणी करना आसान नहीं।
क्यों, क्या वजह?
एक तो ये कि भविष्यवाणियां अक्सर बस आज के ट्रेंड को आगे खींच देती हैं,
अच्छा, मतलब सीधी लाइन में सोच लेते हैं।
हाँ, और जिंदगी सीधी लाइन में चलती नहीं, अप्रत्याशित मोड़ आते हैं, और कई बार तो भविष्यवाणी खुद ही चीजों को बदल देती है।
तो फिर पॉइंट भविष्यवाणी करना नहीं है?
नहीं, पॉइंट है अपने आज को समझना, अपने मूल्यों को पहचानना, और फिर तय करना कि जाना किधर है।
ठीक है, तो अगर भविष्यवाणियों पर भरोसा नहीं तो फिर ये कंप्यूटेशनल भविष्य क्या बला है?
मॉन्टफोर्ट इसे कहते हैं एल्गोरिथम भविष्य, मतलब एल्गोरिथमिक प्रोफेसी। आजकल बड़ी टेक कंपनियां हैं, उनके एल्गोरिथम हैं। वो दावा करते हैं कि वो बता सकते हैं हम आगे क्या खरीदेंगे, क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे।
लेकिन क्या ये सिर्फ बता रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं?
यही सवाल मॉन्टफोर्ट उठाते हैं। वो कहते हैं ये सिर्फ अनुमान नहीं लगा रहे, ये धीरे धीरे हमारे व्यवहार को ढाल रहे हैं, शेप कर रहे हैं।
मतलब वो उस भविष्य को बनाने में मदद कर रहे हैं जिसकी वो भविष्यवाणी कर रहे हैं।
बिल्कुल, सोचो अगर तुम्हें बार बार एक ही तरह की न्यूज या शॉपिंग के सुझाव दिखें तो तुम्हारी पसंद बदलेगी नहीं?
हाँ, असर तो पड़ेगा।
और ये चीज हमें ले जा रही है स्वचालित समाज की तरफ, ऑटोमेटेड सोसाइटी।
जैसे
स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, सोशल मीडिया पर क्या दिखेगा, कुछ देशों में तो लोन मिलेगा या नहीं, या कैदी को पैरोल मिलेगी या नहीं, ये फैसले भी एल्गोरिथम कर रहे हैं।
अरे बाप रे, इसमें तो फिर कई सवाल उठते होंगे।
एल्गोरिथम पूर्वाग्रह, मतलब एल्गोरिथमिक बायस।
बायस कैसे? मशीनें तो न्यूट्रल होती है ना?
यही तो भ्रम है, ये सिस्टम न्यूट्रल नहीं होते। वो उन्हें बनाने वालों के मूल्यों और जिस डेटा पर उन्हें सिखाया गया है उस डेटा के पूर्वाग्रहों को अपना लेते हैं।
अच्छा, मतलब अगर डेटा में ही भेदभाव है तो सिस्टम भी भेदभाव कर सकता है।
हाँ, किताब में कॉम्पैस सिस्टम का उदाहरण है अमेरिका का, उस पर आरोप थे कि वो नस्ली आधार पर भेदभाव कर रहा था।
भारत में भी हम सोच सकते हैं, आधार है, डिजिटल इंडिया है, हम सब कितने ऐप्स पर निर्भर हैं।
सही कहा, ये हमारी जिंदगी आसान बनाते हैं, पर हमें ये समझना भी जरूरी है कि ये काम कैसे करते हैं, क्या इनमें कोई बायस हो सकता है, हमारी जानकारी कैसे इस्तेमाल हो रही है।
लेकिन मॉन्टफोर्ट सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बता रहे होंगे, कुछ समाधान भी होगा।
हाँ हाँ बिल्कुल, वो रास्ता भी दिखाते हैं, और एक दिलचस्प तरीका है अतीत के भविष्य से सीखना।
अतीत के भविष्य मतलब
ये देखना कि पिछली पीढ़ियों ने भविष्य की कल्पना कैसे की थी। जैसे 1939 का न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर था, थीम था द वर्ल्ड ऑफ टुमारो।
हाँ, सुना है उसमें भविष्य की टेक्नोलॉजी दिखाई थी।
सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, वो उस समय के मूल्यों को भी दिखा रहे थे और एक तरह से बेच रहे थे, जैसे उपभोक्तावाद, बड़े कॉर्पोरेशंस का दबदबा, कार पर आधारित जीवन।
अच्छा, तो वो सिर्फ भविष्य का नजारा नहीं था, वो एक खास तरह के भविष्य के लिए तर्क था।
बिल्कुल, और इससे हमें सबक मिलता है, आज जो हमें भविष्य के विजन दिखाए जा रहे हैं उन्हें भी हमें इसी नजर से देखना चाहिए।
मतलब पूछना चाहिए कि ये किसका विजन है, किसके फायदे का है, इसके पीछे क्या मूल्य है।
सही, तो अगर भविष्यवाणी भरोसेमंद नहीं है, अतीत के विजन हमें सावधान करते हैं, तो फिर हम एक्टिवली भविष्य कैसे बनाएं?
हाँ, यहाँ आते हैं मॉन्टफोर्ट के सुझाए तरीके। पहला क्या था? विश्व निर्माण, वर्ल्ड बिल्डिंग।
हाँ, वर्ल्ड बिल्डिंग, ये सिर्फ साइंस फिक्शन राइटर का काम नहीं है।
तो फिर क्या है ये?
इसका मतलब है एक पूरी सुसंगत काम करने वाली प्रणाली या दुनिया बनाना, चाहे वो कहानी के लिए हो या किसी नए प्रोडक्ट के इकोसिस्टम के लिए या किसी नई पॉलिसी के लिए।
इसका फायदा क्या है ऐसे सोचने का?
फायदा ये है कि ये हमें सिस्टमैटिक सोचने पर मजबूर करता है, मतलब किसी भी बदलाव का सिर्फ पहला असर नहीं बल्कि उसके दूसरे तीसरे लेवल के असर क्या होंगे।
अच्छा, चेन रिएक्शन की तरह सोचना।
हाँ, अगर नई टेक आई तो इकोनॉमी पर क्या असर, समाज पर, पर्यावरण पर, सब जुड़ा हुआ है।
कोई उदाहरण?
मॉन्टफोर्ट उर्सुला के लेगिन जैसी लेखिकाओं का जिक्र करते हैं जिन्होंने अपनी कहानियों में बहुत जटिल और विश्वसनीय समाज बनाए, या फिर जैसे एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स के आसपास एक पूरी दुनिया बना दी है।
दूसरा तरीका क्या था?
प्रोटोटाइपिंग हो सकता है,
उदाहरण के तौर पर
जैसे एलन के का डायनेमो कॉन्सेप्ट 1970s में, बच्चों के लिए एक पर्सनल पोर्टेबल कंप्यूटर का विजन, टेक्नोलॉजी बनने से सालों पहले।
हाँ, वो तो बहुत आगे की सोच थी।
वो प्रोटोटाइप सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, वो कंप्यूटिंग के एक नए फलसफे का प्रतीक था, क्रिएटिविटी, लर्निंग।
और स्पेक्यूलेटिव डिजाइन, वो क्या है?
वो और भी आगे जाता है, इसमें डिजाइनर जानबूझकर ऐसी चीजें या हालात बनाते हैं जो अभी है नहीं,
भविष्य की चीजें।
क्यों, मजाक के लिए?
नहीं,
ताकि भविष्य की संभावनाओं पर, उनके नतीजों पर बहस शुरू हो सके। सोचो 2050 की कोई सरकारी सेवा का मॉडल बना दिया, या भविष्य का कोई मेडिकल डिवाइस।
अच्छा,
तो ये भविष्य को थोड़ा महसूस करने लायक बना देता है। हाँ, और हमें मौका देता है कि हम सोचें, बहस करें कि क्या हमें वाकई ऐसा भविष्य चाहिए, इससे पहले कि वो हकीकत बन जाए ये ज्यादा डेमोक्रेटिक तरीका है भविष्य के बारे में सोचने का।
किताब में कंप्यूटेशनल क्रिएटिविटी की भी बात है, एआई वाली कला, संगीत।
हाँ, मॉन्फर्ट कहते हैं ये सिर्फ नए टूल नहीं है, ये हमारे पुराने आइडियाज को चैलेंज कर रहे हैं। कला क्या है, मौलिकता क्या है, कलाकार या लेखक कौन है।
और ये सब वापस एजेंसी पर आता है ना, कि हम सिर्फ दर्शक नहीं है।
बिल्कुल, मॉन्फर्ट तकनीकी नियतिवाद को नकारते हैं, ये सोच की टेक्नोलॉजी ही सब तय करती है। वो कहते हैं हम विरोध कर सकते हैं, सिस्टम का क्रिएटिव इस्तेमाल कर सकते हैं,
लेकिन उसके लिए सिस्टम को समझना तो पड़ेगा।
वही बात, समझना पहली जरूरत है।
तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो इस किताब के सबसे अहम संदेश क्या है, निचोड़ क्या है?
पहला और शायद सबसे जरूरी, एजेंसी बनाम नियतिवाद। भविष्य तय नहीं है, हम उसे बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है।
हाँ, हम ड्राइवर सीट पर हैं या हो सकते हैं।
दूसरा,
भविष्य की बहुलता। कोई एक द फ्यूचर नहीं है, कई सारे फ्यूचर संभव हैं, हमें दरवाजे खुले रखने हैं।
तीसरा,
निर्माण बनाम भविष्यवाणी। अनुमान लगाने से बेहतर है बनाना। क्रिएटिव स्किल्स जरूरी हैं, डिजाइन, कहानी कहना, सिस्टम बनाना।
चौथा, जो हमने काफी डिस्कस किया, कंप्यूटेशनल प्रभाव को समझना, एल्गोरिदम, डेटा, बायस, ये सब कैसे काम करते हैं ये जानना जरूरी है।
पांचवा, कल्पना और प्रणालीगत सोच का महत्व। वर्ल्ड बिल्डिंग, प्रोटोटाइपिंग, ये सिर्फ इंजीनियरों के टूल नहीं, हम सबके लिए सोचने के तरीके हैं,
चाहे हम शहर प्लान कर रहे हों या अपनी गली का कोई प्रोजेक्ट।
बिल्कुल। और छठा, नवाचार की नैतिक जिम्मेदारी। जो लोग नई चीजें बना रहे हैं, भविष्य को आकार दे रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सोचें कि उनके काम का समाज पर, लोगों पर क्या असर होगा।
किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो खास तौर पर याद रह जाते हैं। हाँ, कई हैं, जैसे एक ये, सवाल ये नहीं कि भविष्य क्या होगा, सवाल ये है कि हम कौन से भविष्य बनाना चाहते हैं। पहला सवाल हमें दर्शक बनाता है, दूसरा निर्माता।
वाह, ये तो सीधा एक्शन लेने की बात है।
बिल्कुल। या ये वाला, भविष्य कोई एक मंजिल नहीं बल्कि रास्तों का जाल है। आज के हमारे चुनाव तय करते हैं कि कौन से रास्ते खुलेंगे और कौन से बंद होंगे।
मतलब हमारे रोज के छोटे छोटे फैसले भी मायने रखते हैं।
हाँ, और एल्गोरिदम पर ये लाइन, हर एल्गोरिदम दुनिया का एक सिद्धांत है और हर बार जब उसे इस्तेमाल किया जाता है तो वो एक प्रयोग होता है।
ये याद दिलाता है कि कोड कभी वैल्यू न्यूट्रल नहीं होता, उसमें बनाने वाले की सोच झलकती है।
और ये भी, अपने कंप्यूटेशनल भविष्य को समझने के लिए हमें उस कोड को पढ़ना सीखना होगा जो हमें लिख रहा है।
मतलब हमें टेक सेवी होने के साथ साथ टेक लिटरेट भी होना होगा, उसे क्रिटिकली समझना होगा।
हाँ, और प्रोटोटाइप पर ये बात, पैराफ्रेज्ड, प्रोटोटाइप सिर्फ चीज का मॉडल नहीं, ये एक संभावित दुनिया का टुकड़ा है, ये हमें भविष्य का अनुभव करने, उस पर बहस करने का मौका देता है।
ये उसे सिर्फ एक इंजीनियरिंग टूल से ज्यादा एक सामाजिक चीज बना देता है।
बिल्कुल।
ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन बड़े आइडियाज का क्या करे, कैसे लागू करे?
सबसे पहली चीज तो है भविष्य साक्षरता बढ़ाना। मतलब जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आए या भविष्य का कोई बड़ा दावा हो तो थोड़ा रुक कर सोचें।
क्या सोचें?
सोचें कि ये किसका भविष्य है, इससे असल में फायदा किसे होगा, क्या इसके कोई और विकल्प हो सकते हैं, क्या इसके अनचाहे नतीजे हो सकते हैं।
मतलब जो भी परोसा जा रहा है उसे आंख बंद करके ना मान ले, सवाल पूछें।
हाँ, और जो लोग डिजाइन, इंजीनियरिंग या पॉलिसी बनाने के काम में हैं, वो जिम्मेदार इनोवेशन पर ध्यान दें।
जिम्मेदार इनोवेशन मतलब
सिर्फ ये ना सोचें कि क्या बनाना संभव है, बल्कि ये भी सोचें कि क्या बनाना सही है। प्रोटोटाइप का इस्तेमाल सिर्फ फंक्शन दिखाने के लिए नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक सवालों पर बहस छेड़ने के लिए करें। वर्ल्ड बिल्डिंग जैसी टेक्निकें इस्तेमाल करें।
और हम सब आम नागरिक के तौर पर
हम अपने आसपास की टेक्नोलॉजी पर सवाल उठा सकते हैं। अगर कोई ऐप या सिस्टम हमें समझ नहीं आ रहा या हमें लगता है कि वो ठीक नहीं है तो आवाज उठा सकते हैं।
एल्गोरिदम पारदर्शिता, जवाबदेही की मांग कर सकते हैं।
हाँ, और शायद छोटे लेवल पर खुद भी कुछ बनाने की कोशिश कर सकते हैं।
बनाने की जैसे?
अरे कुछ भी, कोई कम्युनिटी गार्डन प्रोजेक्ट हो, पड़ोस के बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी हो, कोई कहानी लिखना हो, या बस दोस्तों के साथ बैठकर किसी बेहतर भविष्य की कल्पना करना और उस पर बात करना हो, ये सब भविष्य निर्माण के ही छोटे छोटे रूप हैं।
ये तो करने लायक बात है। तो इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही? व्हाट यू मेन टेक अवे?
मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि भाई, अब हम कंप्यूटेशनल सिस्टम्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्हें समझना ये जानना कि वो कैसे हमारी सोच हमारे समाज को बदल रहे हैं ये अब वैकल्पिक नहीं रहा, ये जरूरत है,
ताकि हम टेक्नोलॉजी के साथ अपने रिश्ते को सोच समझ कर निभा सकें।
हाँ, ये सिर्फ टेक्स्ट स्किल की बात नहीं, ये क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आलोचनात्मक सोच की भी बात है।
और मेरे लिए सबसे अहम बात वो सशक्तिकरण वाली फीलिंग है, एम्पावरमेंट। ये किताब याद दिलाती है कि भविष्य कोई डरावनी अनजान शक्ति नहीं है जिसके आगे हम बेबस हैं।
सही कहा।
ये कुछ ऐसा है जिसे हम सब मिलकर बना सकते हैं। मॉन्टकॉट हमें इसके लिए सोचने के नए नजरिए और कुछ तरीके भी देते हैं। ये डरने के बजाय करने की प्रेरणा देती है।
बिल्कुल, भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश शायद बेकार है, लेकिन उसे बेहतर बनाने की कोशिश हम कर सकते हैं।
हाँ, तो भविष्य के बारे में चिंता करने से बेहतर है आज उन छोटे बड़े कामों पर ध्यान दें जो एक बेहतर कल की तरफ ले जाएं।
इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं
और आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।